नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक और बेहद उपयोगी बताया। श्री मोदी ने कहा, इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगामी केंद्रीय बजट पर अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, आयुर्विज्ञान कॉलेज में परिवर्तित किए गए वर्तमान जिला और रेफरल अस्पतालों को केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता जारी रहेगी। मौसम विभाग ने रविवार तक गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और टेनिस में एन श्रीराम बालाजी और उनके जोड़ीदार गोंजालो एस्कोबार जर्मनी में ब्रावो ओपन चैलेंजर के पुरुषों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक और बेहद उपयोगी बताया है। ऑस्ट्रिया की यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने कहा कि वे वेना में विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी से काफी खुश हैं। उन्होंने ऑस्ट्रिया के लोगों के आतिथ्य और स्नेह के लिए चांसलर कार्ल नेहमर और ऑस्ट्रिया की सरकार का आभार व्यक्त किया। वेना में ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमर के साथ वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक दिशा देने संबंधी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने परस्पर सहयोग को और सशक्त बनाने की नई संभावनाओं की पहचान की है। दोनों देशों ने बुनियादी ढांचा विकास, नवाचार, नवकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल और कचरा प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का आह्वान किया। ऑस्ट्रिया और भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में तेजी से बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने के लिए ऑस्ट्रिया के कारोबारी हितधारकों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
2014 में हम 10 नंबर पर थे, आज भारत 8% के रेट से ग्रो कर रहा है। इस स्पीड के साथ आज हम 5 नंबर पे हैं, हम टॉप 3 में पहुंचेंगे।
प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया की कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत उच्च गुणवत्ता और कम लागत के विनिर्माण क्षेत्र के भारत के आर्थिक परिदृश्य का लाभ उठाने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता एंटोन जिलिंगर से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आध्यात्मिकता पर बातचीत के अलावा क्वांटम प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को तलाशने पर चर्चा की। वेना में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर के लोग भारत से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत ने हमेशा दुनिया को शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है।
हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे। हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। इसलिए आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है।
41 वर्ष के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की दो देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। श्री मोदी सोमवार को 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रूस और ऑस्ट्रिया गए थे। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में बिम्स्टेक समूह के सदस्यों को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का पहला संस्करण पिछले वर्ष जुलाई में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक बहुआयामी सहयोग के लिए 7 दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है। भारत के अलावा इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। वे आगामी केंद्रीय बजट के लिए उनके विचार और सुझाव लेंगे। इस बैठक में अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भागीदारी करेंगे। इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख को शुरू होगा। 23वीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि यह बजट भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार की दूरगामी नीतियों का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रमुख आर्थिक और सामाजिक सरोकारों के साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव कराया गया। बिहार की 1, मध्यप्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 सीट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर वोट डाले गए। परिणाम इस महीने की 13 तारीख को घोषित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के रायगंज में 67.12%, राणाघाट दक्षिण में 65.37%, बागदा में 65.15% और मानिकतला में 51.39% मतदान हुआ। उत्तराखंड में बद्रीनाथ में 49.8% और मैंगलोर में 68.24% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में 78.71%, तमिलनाडु के विक्रवंडी में 82.48% और पंजाब के जालंधर पश्चिम में 51.3% वोट डाले गए। हिमाचल चुनाव आयोग के अनुसार नालागढ़ में सबसे अधिक 79% से अधिक मतदान हुआ। हमीरपुर में 67.7% और देहरा में 65.2% वोट डाले गए। वहीं बिहार के रुपौली में 57.25% मतदान हुआ। समाचार कक्ष से मनोज।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयुर्विज्ञान कॉलेज में परिवर्तित किए गए वर्तमान जिला और रेफरल अस्पतालों को केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता मिलनी जारी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंदा ने इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल 157 आयुर्विज्ञान कॉलेजों में से 108 कॉलेज पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि जिला अस्पतालों को उन्नत करने और सशक्त बनाकर नए आयुर्विज्ञान कॉलेज खोलने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना से वित्तीय समर्थन दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से त्यागपत्र की मांग की है। बेंगलुरु में कल श्री विजेंद्र ने कहा कि कल पार्टी नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के इस्तीफे और मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मांग को लेकर मैसूर में प्रदर्शन करेंगे। देशभर में भारी बारिश के बीच कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें असम, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाके शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में वर्षा जनित हादसों में 22 लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तराई क्षेत्र के श्रावस्ती जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आकाशीय बिजली गिरने से प्रतापगढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि सुल्तानपुर में 6 और चंदौली जिले में 5 लोगों की जान चली गई। राज्य के 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। बाढ़ के कारण हजारों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है और करीब 8 लाख लोग प्रभावित हैं। मैलानी जंक्शन को गोंडा से जोड़ने वाला रेल मार्ग पानी में डूबा हुआ है। वहीं बाराबंकी को गोंडा, बहराइच और अन्य नेपाल के सीमावर्ती जिलों से जोड़ने वाले एल्गिन सड़क पुल में दरारें आ गई हैं। राहत और बचाव टीमों ने 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
असम में बाढ़ से कृषि भूमि, खरीफ फसल और मत्स्य पालन सहित बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में यातायात पर भी काफी असर पड़ा है।
बाढ़ और बढ़ते पानी के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालात में सुधार के बावजूद अभी भी 27 जिलों में 14 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों में खाने पीने के सामान वितरित किए जा रहे हैं। इस बार में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 107 जंगली जानवरों की मौत हुई है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र के मध्य भाग और तटीय कर्नाटक में रविवार तक भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात में भी अगले तीन दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और बिहार में भी आज तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी आज भारी बारिश होने का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हुई हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 4,885 श्रद्धालुओं का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। बालतर और पहलगाम से तीर्थयात्री पवित्र गुफा के लिए आगे की यात्रा शुरू करेंगे। और खेल खबरों के साथ हैं मुकेश पल।
टेनिस में भारत के एन श्रीराम बालाजी और इक्वाडोर के उनके जोड़ीदार गोंजालो एस्कोबार जर्मनी के ब्रोंक्सविग में ब्रावो ओपन चैलेंजर के पुरुषों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत इक्वाडोर की जोड़ी ने बोलीविया के बोरिस एरियास और फेडरिको जेबोलॉस की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-3, 6-0 से पराजित किया। ये जोड़ी आज शाम क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर और अर्जेंटीना के गुइलेर्मो डुरान के साथ खेलेगी। इस बीच पुरुषों के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल अर्जेंटीना के पेद्रो कैचिन से एक कड़े मुकाबले में 4-6, 5-7 से हारकर प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए हैं। वहीं फुटबॉल में इंग्लैंड यूईएफए यूरोपियन चैंपियंस 2024 के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब 15 जुलाई को फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल मुकाबले आज से खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेसिकोवा का सामना कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में क्रोएशिया की दोदो वैकिक और इटली की जैस्मिन पोलेनी आमने सामने होंगी।
अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
धन्यवाद सिद्धार्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा को आज के सभी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खी बनाया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की शिखर वार्ता को जनसत्ता ने सुर्खी बनाते हुए लिखा है, ये युद्ध का समय नहीं, आतंकवाद अस्वीकार है। वीर अर्जुन के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रिया आपसी सहयोग को और मजबूत करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को पति से गुजारा भत्ता मांगने के अधिकार के पक्ष में फैसले को ज्यादातर अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला लिखता है, मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। नवभारत टाइम्स की खबर है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अब हार्ट और न्यूरो की ओपीडी के लिए नया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाएगा। यहां पर कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी की ओपीडी होगी। मरीजों का एडमिशन कार्डियक न्यूरो सेंटर में होगा। नए ब्लॉक में सिर्फ ओपीडी होगी और पुराने ब्लॉक में सिर्फ एडमिशन और सर्जरी होगी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक और बेहद उपयोगी बताया। श्री मोदी ने कहा, इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगामी केंद्रीय बजट पर अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, आयुर्विज्ञान कॉलेज में परिवर्तित किए गए वर्तमान जिला और रेफरल अस्पतालों को केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता जारी रहेगी। मौसम विभाग ने रविवार तक गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और टेनिस में एन श्रीराम बालाजी और उनके जोड़ीदार गोंजालो एस्कोबार जर्मनी में ब्रावो ओपन चैलेंजर के पुरुषों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।